तत्वार सूत्र लेक्चर नंबर 18 के तत्वार सूत्र को जो रामजी भाई ने उस पर टीका लिखी उस शास्त्र के पेज नंबर 51 पर आ रहे हैं। हमने अध्याय 1 सूत्र 13 देखने को चालू किया था। वहां मति ज्ञान के जो अलग अलग नाम है उसकी बात चल रही थी। तो कल हम देख रहे थे अभिनिबोध नामक भी एक नाम है। वैसे तो हमने देखा था मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध आदि नामों से उसको मति ज्ञान को कहा जाता है। अब ये अभिनिबोध लिखा है उसका थर्ड पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं यह सूत्र सिद्ध करता है कि जिसने आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं किया हो वह आत्मा का स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि स्मरण तो उसी का किया जाता है कि जिसका एक बार वेदन या देखा गया है या ज्ञान में आया है ऐसी बात का। क्योंकि स्मृति तो क्या लिखा, पूर्वानुभूत पदार्थ की ही होती है, इसलिए अज्ञानी को प्रभु स्मरण यानी आत्म स्मरण नहीं होता, परंतु राग मेरा है ऐसी पकड़ का स्मरण होता है, क्योंकि उसने बार बार ऐसे ही जाना भी है और माना भी है, क्योंकि उसे उसका अनुभव है। इस प्रकार अज्ञानी जीव धर्म के नाम पर चाहे जो कार्य करे तथापि उसका ज्ञान मिथ्या होने से उसे धर्म का स्मरण नहीं होता, किंतु राग की पकड़ का स्मरण होता है। स्वसंवेदन बुद्धि मेधा प्रतिभा प्रज्ञा इत्यादि मति ज्ञान के भेद है। बुद्धि हाँ, पर उसका अर्थ भी है ये मति ज्ञान के मति के ही सब नाम है अलग अलग। देखो मेघा यानी जो मेघ है उसको स्त्रीलिंगी बना के मेघा कहा जाता है, और मेधा यानी जिस बुद्धिशाली जीव जो होगा उसको मेधा कहते हैं। ये नाम भी है लड़की का, ये प्रतिभा को कल से आप उन्हें ये मति ज्ञान बोलना चाहिए। अपने अरविंद भाई के चाची है वो। स्वसंवेदन का अर्थ बता रहे हैं अभी, सुखादि अंतरंग विषयों का ज्ञान। देखो ये ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या कहा कैसा है, सुख आदि यानी अन्य गुण भी इसमें है लेकिन मुख्यतः तो सुख की है। तो सुखादि अंतरंग विषयों का ज्ञान, उसको स्व संवेदन है, यानी अपने स्वरूप का वेदन है, अनुभवन है। बुद्धि ही बोधना मात्रत्व बुद्धि है।
बुद्धि वो कभी आगे का वो डैश है, वो विसर्ग नहीं है, डैश है।
हाँ, बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि केवल तो बोधन मात्रत्व बुद्धि है। बुद्धि प्रतिभा प्रज्ञा आदि मति ज्ञान की तारतम्यता यानी हीन अधिकता सूचक ज्ञान के भेद है। यानी ये भी मति ज्ञान के ही अलग अलग लेवल्स जो है, इंटेलेक्चुअल जिसको हम कहेंगे, वो तो मति ज्ञान की तारतम्यता यानी उसमें कम अधिक पना हीन अधिकता। अनुमान दो प्रकार के हैं, एक मति ज्ञान का भेद है और दूसरा श्रुत ज्ञान का। साधन के देखने पर स्वयं साध्य का ज्ञान होना सो मति ज्ञान है। अच्छा, साधन के देखने पर स्वयं साध्य का ज्ञान होना सो मति ज्ञान है। ये मुझे याद नहीं था,
साधन हेतु कहते हैं, ये न्याय की भाषा है। जैसे हमने धुआं देखा, दूर पर्वत पर धुआं देखा, आपने देखा क्या धुआं, तो आपको क्या ज्ञान हुआ, वहाँ आदमी होने का। तो साधन के द्वारा हमें साध्य भी जो जाना जा सकता है उसको साध्य कहते हैं। अब ये जो टर्मिनोलॉजी ना, हम उससे परिचित नहीं है, पर आपका इतना पढ़ेंगे तो मैं अर्थ प्रकाशिका में से इन्हीं शब्दों पर फिर पढ़ के सुनाऊं।
पढ़ो पढ़ो, अभी जितना पढ़ा है उतना तो पढ़ो। बुद्धि क्या, और आगे चलो,
अभी दो तीन ही लाइन
है। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी है।
सूत्र के लिए कितना बाकी आपके,
दूसरे के हेतु और तर्क के वाक्य सुनकर जो अनुमान ज्ञान हो सो श्रुतानुमान है। चिन्नादि से उसी पदार्थ का अनुमान होना सो मति ज्ञान है। उसी चिन्नादि से दूसरे पदार्थ का अनुमान होना सो श्रुत ज्ञान है। इतना ही है।
देखो, अभी हमने जो सूत्र पढ़ा 13 नंबर, वो सूत्र दोबारा पढ़ते क्या है, उसमें लिखा है मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इति अनर्थांतरम। इतने ये सभी क्या है, अनर्थांतर है, यानी अलग अलग नहीं है, ये तो एक ही है। मति ज्ञान के ही है, नाम है, अलग नाम, पर्यायवर्ती नाम, क्योंकि ये सभी मति ज्ञान आवरण के पोषण से उत्पन्न हुए। तब इसमें से अलग अलग नाम की अपेक्षा से उसके अर्थ करते हैं। तो मति कैसे नाम, यानी वो नाम कैसे तैयार हुआ, तो मनन थे मति, मनन करना, चिंतन करना, उसको मति कहते हैं। स्मृति, स्मृति यानी मेमोरी, स्मरण होना, किसका हो सकता है, जो आपने पहले देखा है उसका होगा, फिर बिना देखे होता होगा, पहले देखा होगा। तो कहते हैं स्मृति, पहले जो अवग्रह यहाँ अवाय धारणा रूप अनुभव में आया था, यानी पहले हमने जाना था, उसका कालांतर में वह इस प्रकार तत्पना से उल्लेख करने वाला जो स्मरण रूप ज्ञान, वह ऐसा था हम कहते किसी के बारे में, तो ये हम स्मरण से कहते हैं किसी चीज के बारे में, कि हमने वो मंदिर देखा 10 साल पहले गए थे यात्रा में, तो हमने ऐसा ऐसा देखा था, ये क्या है, सब स्मृति कालांतर के बाद उस देखी हुई चीज को याद, वो भले कोई व्यक्ति हो, कोई मंदिर हो, कोई अन्य ठिकाना हो, तो हम बाद में उसको याद करते हैं, स्मरण में लेते हैं, उसको स्मृति कहते हैं। अब प्रत्यभिज्ञान पर बात आपने पूछी थी ना, प्रत्यभिज्ञान के बारे में, वैसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कहते हैं उसको संज्ञा भी कहते हैं, यहाँ उसका नाम संज्ञा है, भक्ति स्मृति और संज्ञा लिखा ना, संज्ञा का नाम प्रत्यय भी ज्ञान, ये उसका दूसरा नाम है। आपके उसमें भी लिखा था प्रत्यय भी ज्ञान कहते हैं, आपके पुस्तक में जो है ना उसमें भी लिखा था, संज्ञा के आगे लिखा था। अभी उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर पहले जो देखा था उसके स्मरण पूर्वक, केवल स्मरण हुआ ये नहीं है, स्मरण होना तो स्मृति में चला जाएगा। तो अभी वस्तु, कोई वस्तु देखे है और उसके साथ वो स्मरण वाली वो दूसरी वस्तु है, उनके संकलनात्मक, उसकी कंपेरिटिव जो वहाँ ज्ञान होता है, जो संकलनात्मक जो रूप है, दोनों को इकट्ठा कंपेयर करके हमें जो ज्ञान मिला वो प्रत्यभि ज्ञान है। वो तो अनेक प्रकार का, जैसे एक नंबर का तो एक है, उसका नाम है एकत्व प्रत्यभि ज्ञान, कि हमने किसी बालक को देखा था 10 साल पहले, अभी उसी को देखा है, वो बड़ा हो गया, परंतु वो कैसा ज्ञान है, ये वही है। यहाँ तो देवदत्त कहा उसको, तो कहते उसको देखकर हमें स्मरण आया ये वही देवदत्त, देवदत्त ने उसको कोई नाम रमेश सुरेश को कुछ
है,
उसी पदार्थ की बात, उसको हमने पहले देखा था, वही ये चीज है, वो एकत्व प्रत्यभि ज्ञान।
तो उसमें उस स्मृति में क्या कर, क्योंकि स्मृति में भी वो पास्ट में देखा था, वही
स्मृति के लिए सामने देखने की जरूरत नहीं, बस हमने स्मरण किया उसको, ये तो सामने देख कर ये वही चीज है जो हमने देखी, या ये वही पुरुष है जो हमने पहले देखा।
यहाँ पर ये बताएं संकलन रूप क्या, यानी पहले देखा था अभी देखा,
दोनों
को मिलान करा, संकलन यानी उसको जोड़ किया, आपने कल परसों बताया था जोड़ रूप ज्ञान,
यही बात है, मिलान करके वो ज्ञान
हुआ। वहाँ तो कुछ जोड़ने का नहीं, स्मृति यानी अरे ये रास्ते से तो हम पहले कभी आए थे, बस
नहीं बैठे बैठे आप कुछ भी स्मरण कर लो ना, हम बचपन में हमने, हम उस गांव में रहते थे, हमारा ऐसा घर था, कुछ कुछ भी हो आपको विषय, वो स्मरण हो गया, स्मृति हो गया, और सामने कोई चीज देखकर वो स्मरण वाली चीज और ये वाली चीज, इनके हम कंपेयर करते हैं, तो एक तो हुआ वही चीज थी तो एकत्र हुआ, एकत्र प्रतिनिधि। अब दूसरा है, उसका नाम है सादृश्य, सादृश्य नहीं सिमिलैरिटी। तो किसी ने वन में वन गाय देखी, वन गाय ने वो तो वहां का जंगल की गाय, तो पहले गांव में उसने गाय देखी, तो उसका उसके समान ये दिखती, थोड़ी सिमिलैरिटी है, वो है नहीं, वो गाय नहीं है, तो उसको कहेंगे सादृश्य प्रत्यभि ज्ञान, सिमिलर है, उतना ही, वही है नहीं, वही है तो एकत्व हो गए, और ये सिमिलर है तो ये सादृश्य हो। एक होता है विलक्षण प्रत्यभि ज्ञान, तीसरा नंबर, पहला एकत्व था, दूसरा सादृश्य था, तीसरा है विलक्षण। इसमें नहीं बेटा वो लिखा, मेरे पास दूसरी पुस्तक है ना अर्थ प्रकाशित, उसमें से ये अपना विषय जरा एक्स्ट्रा है, परंतु थोड़ा अच्छा, क्योंकि ये न्याय की भाषा अपने कभी हुई नहीं है, तो कभी ना कभी तो होनी है, तो अभी हम थोड़ा देख लेते हैं इसको। इस तीसरे का नाम है विलक्षण, विलक्षण है विलक्षण, उसके जैसा नहीं है, अलग है।
तो फिर इसको जो कैसे
अभी देख रहे ना हम बताए, जैसे भैंसे को देखा, भैंसे समझते हैं भैंसा
को,
तो पहले बैल को देखा था, यह बोला नहीं है, उससे विलक्षण है, सामने कोई देखा भी ये वह नहीं है, परंतु उससे विलक्षण है, ऐसा कुछ ज्ञान हुआ, तो वह है विलक्षण प्रत्यभि ज्ञान। यह उसके सदृश नहीं है, उससे विसदृश है, सो विसदृश प्रत्यभि ज्ञान, यह और अलग। विसदृश ने हमारे हमें तो कोई काली गाय देखी और हमें स्मरण आया वो सफेद गाय वाला, तो वो उससे सिमिलर नहीं, वो तो कुछ अलग है, या अन्य भी विश्व दृष्टा देखते हैं उसके आकार में है, جیسے بلی اور ہم وہاں گئے تھے نا
شیر
شیر تو شیر کا بچہ ہوگا اور بلی ہوگی تو اس میں تو وسدرشتا ہے اب ایک ہوتا ہے پرتیوگی پانچ نمبر کا پرتیوگی یعنی کیا ہم کسی کو دیکھ کر ایسے کہتے ہیں یہ تو چھوٹا ہے میں تو بڑا تھا ہم نے تو دیکھا تھا یہ کمپیریزن کرنا تو کس میں کس میں کسی کو نزدیک دیکھ کر کسی کو دور دیکھ کر یہ اس سے دور ہے وہ اس سے نکٹ تھا یہ کمپیریزن یا یہ اس سے چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا تھا یہ سر سے اس پرکار کھیتر کالادی کی اپیکشا انیہ انیہ اپیکشا سے ابھی کوئی بھی اپیکشا لگا اس کو ورن لگا اس کا سائز دیکھا اس کا جو کچھ ہے تو یہ انیہ انیہ اپیکشا لگا کر سنکلن روپ جو گیان ہے اس کو پرتیوگی इत्यादि प्रत्यभिज्ञान के अनेक भेद है वे सर्व ही परोक्ष प्रमाण तो परोक्ष प्रमाण के भेद चल रहे थे ना मति ज्ञान जो है ये मति ज्ञान का भेद है हम किसी चीज को देखते हैं तो हमने पूर्व में देखी हुई सुनी हुई कुछ अलग चीज हमें याद आती है फिर हम उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं दोनों का इकट्ठा ज्ञान करते हैं तो उसको संकलन रूप या द्वैत ज्ञान कहते हैं और उसका नाम है प्रत्यभिज्ञान यहाँ तक क्या है अभी इसके जो अलग अलग प्रकारों के नाम है उसको भूल जाओ चलेगा अभी हमने सुन लिया चिंता यानी इसी का दूसरा नाम है तर्क तर्क आप लॉजिक कहते तो कहते हैं चिंतनम चिंता अभी इसमें तो बहुत सारे न्याय की भाषा है अभी जो साधन और साध्य शब्द आए थे ना तो साधन ने कोई हेतु बताया और उसके द्वारा हम कुछ सिद्ध करना चाहते हैं साध्य कुछ जानना चाहते उसको साध्य कहेंगे वो साधन को ही लिंग कहते हैं और जिसको जानना है उसको लिंगी कहते हैं अभी इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी तो उसको एक शब्द आया था हमने कि अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति उसकी थोड़ी चर्चा करो व्याप्ति का दूसरा नाम है अविनाभाव संबंध अविनाभाव व्याप्ति उसको कहेंगे व्याप्ति व्याप्ति के दो भेद हैं एक अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरिक व्याप्ति कल क्या परसों ये शब्द आया था कहीं पर सुबह आया था क्या व्यतिरिक अन्वय व्यतिरिक हाँ दोनों प्रकार से व्याप्ति होती है तो ये अन्वय व्याप्ति किसको कहना और व्यतिरिक व्याप्ति किसको कहना तो अन्वय व्याप्ति का दूसरा नाम है तथोपपत्ति तथा उपपत्ति तथोपपत्ति और व्यतिरेक व्याप्ति का दूसरा नाम है अन्यथा अनुपपत्ति नॉट अदरवाइज पॉसिबल
अन्वय व्यतिरिक और दूसरा कौन सा
अन्वय व्याप्ति और व्यतिरिक व्याप्ति व्याप्ति के दो भेद व्याप्ति का नाम है अभिनाभाव एक है अन्वय व्याप्ति और एक व्यतिरेक व्याप्ति अभी इसका उदाहरण देंगे तो हम ख्याल में आ जाएगी बात तो कहते जिसके होने पर जिसका होना अवश्यंभावी है वह अन्वय व्याप्ति है और जिसके न होने पर जिसका न होना अवश्यंभावी है वो व्यतिरेक व्याप्ति अभी इसका उदाहरण देखेंगे तो ख्याल में आ जाएगा तो जिसके होने पर ही जिसका होता है अग्नि के होने पर ही धूम का होगा यानी कारण के होने पर ही कार्य का होना उसको कहेंगे अन्वय व्याप्ति
धुआं के होने पर अग्नि अग्नि के होने पर
अग्नि के होने पर ही धूम हो सकता है अग्नि के होने पर धूम होता ही ऐसा नहीं कहा धूम होता है वहाँ अग्नि होनी चाहिए तो अग्नि के होने पर ही धूम होता है धूम यानी धुआं
स्मोक,
तो वो कहेंगे अन्वय व्यापक। अब कहते अग्नि न होने पर धुआं नहीं होगा, यह व्यतिरिक व्यापक। ऐसा नहीं समझना कि धुआं नहीं है तो अग्नि नहीं है, वो रूटा नहीं लगाना, क्योंकि हम तर्क करने में बहुत माहिर है ना। एक इस तरह से
दूसरा नहीं समझे कौन सा,
देखो एक पहला कौन सा है, कारण के होने पर कार्य का होना अन्वय व्यापक, यानी होता ही है, यानी अग्नि के होने पर ही धूम होता है। दूसरा है अग्नि के न होने पर धूम नहीं होता, उसको कहेंगे व्यतिरिक्त व्यापक, यानी उसका कारण नहीं है तो वो कार्य भी नहीं होता। और ये सारे व्याप्ति ज्ञान है उसको कहेंगे तर्क। ये धुएं को देखना देखकर हमने वो ये व्याप्ति ज्ञान है उसके द्वारा हम अनुमान पर पहुंचते हैं। हाँ पहले तर्क चाहिए ना, कोई उसका हेतु चाहिए, अविना भाव होता है तब जाके हम अनुमान करेंगे उसको। अभी ये हो गया, हमने अभी तक मति गया देखा, स्मृति देखा, प्रत्यय भी देखा, चिंता में तर्क में ये व्याप्ति ज्ञान भी देखा, अभी अभिनिबोध उसको देखेंगे। अभी इसमें भी अनुमान इसको कहेंगे कि जो साधन ने हेतु देखकर हमें पदार्थ का ज्ञान हुआ तो उसको कहेंगे अनुमान प्रमाण, ये प्रमाण कहेंगे। पहले तर्क क्यों देते हैं, क्योंकि हमने उस वस्तु को साक्षात देखा है, हमने किचन में देखा था, अभी आजकल के नहीं पहले जमाने के, कि बहुत धुआं था तो वहां अग्नि थी, लकड़ी जल रही थी तो धुआं हुआ था। तो फिर अभी हम दूर कहीं धुआं देखते तो वहां पर भी अग्नि होनी चाहिए, ये अनुमान कर रहे हैं। उसके लिए तर्क का बेस है कि जहां वो अग्नि के बिना दूर नहीं हो सकता, ये तर्क लगा। और फिर हम किस अनुमान तक पहुंचे कि यहाँ अग्नि होनी चाहिए। अब ये साधे किसको कहना, साधन किसको कहना, उसकी लंबी चर्चा है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि साध्य यानी क्या, हम कोई सिद्ध करना चाहते हैं, परंतु उसी को साध्य कहते हैं जो सिद्ध हो सकता है। आप कहेंगे आकाश के फूल को सिद्ध करो, आकाश का फूल होता ही नहीं तो उसको सिद्ध करने की कोई बात नहीं है। तो जो साध्य हो सकता है फिर उसके लिए साधन ने हेतु दिया था, उसको कहते हैं साधन, यानी साधन के द्वारा हम साध्य की सिद्धि करते हैं, उसको साध्य यानी जानते हैं हम उसको, यानी जो हमें अभिप्रेत है कोई वस्तु उसी की सिद्धि की जाती, बिना उसके नहीं हो सकता। अभी ये सारे जो है ये जो भेद बताए हैं वो सभी परोक्ष प्रमाण है, ये मति ज्ञान के हमने भेद देखे। आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा नया प्रत्यय विज्ञान के भेद वगैरह अपना विषय नहीं हुआ है, और वो व्याप्ति के भी भेद अपना नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा हमने देख लिया।
मति ज्ञान की उत्पत्ति के समय निमित्त, जब जब मति ज्ञान उत्पन्न होता है तो समय निमित्त क्या है, ये बात यहाँ पर बताना चाहते हैं।
तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, यानी तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम,
अर्थ को देखते हैं। इंद्रिया, इंद्रिय और अनिंद्रिय ऐसा लिखा, तो इंद्रिया और मन, मन को अनिंद्रिय कहते हैं, जो इंद्रिय नहीं है फिर भी उसको इंद्रिय कहेंगे। इंद्रिया और मन तत् यानी उस मति ज्ञान के निमित्त है, यानी हमें जो ज्ञान होता है कौन सा, मति ज्ञान, उसमें इंद्रिया और मन निमित्त होते हैं। लेकिन इंद्रिया से और मन से ज्ञान होता है ऐसा नहीं, जब ज्ञान होता है उस समय इनकी हाजिरी निमित्त रूप से होती है। इंद्रिय आत्मा यानी अर्थ क्या क्या, इंद्र यानी आत्मा परम ऐश्वर्य रूप प्रवर्तमान है, यानी इसका परम यानी उत्कृष्ट, ऐसा जो ऐश्वर्य यानी जिसके पास संपत्ति है कहो या ऐश्वर्य है कहो, वो उससे जो प्रवर्तमान है, इस प्रकार अनुमान करने वाला शरीर का चिन्ह, इसको इंद्रिय कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, ये आंखों से सिर्फ दिखाई देता है, अन्य कोई इंद्रिय देखने का काम नहीं करता है, ये उसका ऐश्वर्य है और उससे वह प्रवर्तमान है और वह एक शरीर का चिन्ह है। नो इंद्रिय, उसका अर्थ मन, जो सूक्ष्म पुद्गल स्कंद मनोवर्गना के नाम से पहचाने जाते हैं, ये आप जानते हैं कि वर्गना जो होती है वो हमने पांच प्रकार की देखी थी, वो पांच प्रकार की वर्गनाओं का नाम आप जानते नहीं है, जानते हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो। मनोवर्गना, भाषा वर्गना, कौन सी नहीं नाम
नहीं,
हाँ वर्गना वर्गना बराबर है, आप सही बोल रहे हैं, आपने दो वर्गना के तो सही नाम बोले। अच्छा मिली भाई आप बताना साहब, सुनना भाई,
आहार वर्गना, तेजस वर्गना, कर्म वर्गना, भाषा वर्गना, मनो वर्गना।
अभी इसमें क्रम जहाँ आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं है, ये वर्गना यानी पुद्गल के स्कंदों के नाम है। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं, जिससे ये मन बनता है, कौन सा, द्रव्य मन, वो काहे से बनता है, मनोवर्गना से बनता है, ये बात बता रहे। अभी देखो क्या कहना चाहते हैं, मन जो सूक्ष्म पुद्गल स्कंद जो है, कौन है वो पुद्गल स्कंद, तो मनोवर्गना के नाम से पहचाने जाते हैं। यानी मनोवर्गना कैसी है, सूक्ष्म है, तो उससे सूक्ष्म क्या है, तो कामार वर्गना है। तो कह रहे पहली जो आहार वर्गना है ना, वो तो आहार वर्गना से शरीर बनता है, तो शरीर दिखता है कि नहीं हमें, तो वो स्थूल। लेकिन भाषा वर्गना जो है वो आपको दिखती है क्या, सुनाई देती है कि नहीं, तो अन्य इंद्रियों से जानी जाती है, इस तरह से सूक्ष्मता है। तो मनोवर्गना कैसी है, कोई भी इंद्रियों से जानी नहीं जाती है, तो इसलिए वो सूक्ष्म है। तो क्या कह रहे हैं, मन जो सूक्ष्म पुद्गल स्कंद, वो किस नाम से जाना जाता है, मनोवर्गना के नाम से पहचाने जाने जाते हैं, उनसे बने हुए शरीर का आंतरिक अंग, ये मन जो है आंतरिक यानी इंटरनल, अंग यानी लिम्ब पार्ट, ये कैसा है, ये जो अपने हृदय है, हृदय के बाजू में एक ऐसा स्थान है कि वहां ये द्रव्यमन होता है, वो द्रव्यमन के आकार की भी बात शास्त्र में आती है, आप जानते हैं, हाँ द्रव्यमन कौन सा, हाँ बराबर है, आप आधे बराबर है, वीरेश भाई हाँ ये इन्होंने बताया, पर वो कमल कितने हैं, 1000 क्या सहस्त्र, हाँ तो वो कौन बोले भाई,
उन्होंने बोला फिर से बताओ दोबारा, बर्फ हो रहा है,
देखो आपको आसानी से बता दो, अष्टदल कमल के आकार, अष्टदल यानी आठ पाखुड़ियां,
दोनों क्या कह रहे थे, कमल के आठ पाखुड़ियां, ऐसा नहीं, आठ पाखुड़ियों वाला कमल के आकार, पाखुड़ी के आकार का नहीं है, पूरे कमल के
आकार, ये ऐसा जो आठ पाखुड़ी वाला कमल होता है उसके आकार का वो मन बना है, द्रव्य मन, किसके, हर संगी पंचेंद्रिय जीव के पास है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि आज तक किसी डॉक्टर को हार्ट ऑपरेशन करके ओपन हार्ट ये वो इसको दिखा नहीं है, इतना सूक्ष्म है। कहने का मतलब क्या है, सूक्ष्म है। तो क्या कहा, मनोवर्गन के नाम से पहचाने जाते हैं, उनसे बने हुए शरीर का आंतरिक अंग, ये आंख है कान है ये सब बाहर में दिखते हैं, वो नहीं दिखते है किसको, जो कि अरे लिखा है ना साहब देखो, अष्टदल कमल के आकार हृदय स्थान में है। हा? मैंने भी नहीं पढ़ा था, हाँ फिर भी नहीं बताया। अरे वाह वाह वाह, कितना ओबीडियंट है। हाँ बहुत अच्छा किया आपने, जिंदगी में सबसे अच्छी बात आज करी। देखो देखो, अब कहते हैं मति ज्ञान होने में इंद्रिय और मन निमित्त होता है, यानी दोनों ही होता है ऐसा नहीं, वॉट एवर इज अवेलेबल एप्लीकेबल। एक इंद्रियों को कितने मन होते होंगे, मन ही नहीं, क्यों? हाँ तो क्या हुआ बोलो, असंगी है, असंगी यानी मन रहित है। मन रहित कौन कौन से जीव है भाई, नलिन भाई, मन रहित कौन कौन से जीव है, बहुत अच्छा बहुत सुंदर, यही बात सही है। एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय ये मन रहित है, तो उनकी क्या विशेषता है? हाँ बोलो, नहीं नहीं नहीं, ये असंगी तक के एक इंद्रिय से लेके असंगी जीव जो है उनमें विशेषता नहीं कहेंगे, खामी क्या है? बहुत अच्छा, वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, क्यों? कि सम्यक दर्शन तो सिर्फ संगी जीवों के होता है, ये क्राइटेरिया है उसका। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मति ज्ञान होने में इंद्रिय, यानी कोई एक इंद्रिय वाला जीव होगा तो वो इंद्रिय उसको काम में आएगा, दो इंद्रिय वाला होगा तो दोनों इंद्रियों से वो जानेगा इस तरह से, और जो मन सहित पांच इंद्रियों वाला है वो उनके सभी निमित्त होता है, ऐसा जो इस सूत्र में कहा है। सो वह परद्रव्यों के होने वाले ज्ञान की अपेक्षा से कहा है, क्या कहा, परद्रव्यों के होने वाले ज्ञान यानी स्वद्रव्य का नहीं, क्योंकि वो स्वद्रव्य के जानने में इंद्रिया मन काम में नहीं आती, इसलिए आत्मा को क्या कहा, इंद्रिया अतीत, मना अतीत, वचना अतीत, और नजदीक जाना है अरविंद भाई के पास तो नयातीत, ये वचन में आ गया ना सर। तो कह रहे हैं परद्रव्यों के होने वाले ज्ञान की अपेक्षा से कहा ऐसा समझना, भीतर स्वलक्ष्य में मन इंद्रिय निमित्त नहीं है। जब जीव उस मन और इंद्रिय के अवलंबन से अंशतः पृथक होता है तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है। क्या कहा, जो जीव है वो क्या करता है कि अंशतः ये मन का और इंद्रिय का अवलंबन छोड़ देता है और अपने स्वरूप को जान रहा है। तो कैसे
उदाहरण देख सकते हैं, इसे बच्चों को हम कहानियां सुना सकते हैं कि हम एक बार गए वो मैसूर का राजवाड़ा देखने के लिए, आपने देखा है कि नहीं देखा, तो हम गए राजवाड़े के भीतर तो ये बड़ी बड़ी खिड़कियां थी सब, और तो एक बाजू से देखा उसमें एक खिड़की से जाकर तो उनका वो कुछ विधानसभा वगैरह कुछ उसकी बिल्डिंग दिखाई दी, दूसरे बाजू से देखा तो कोई पर्वत दिखाई दिए, तीसरे से बाजू से देखा तो कोई नदी दिखाई दी, चौथे खिड़की से देखा तो कोई ट्रैफिक वो सब चल रहा था रास्ते का वो दिखाई दिया, तो फिर हम घर लौट के आए। हमने तो सुना था बहुत अच्छा है राजभवन अंदर, बहुत उसका सौंदर्य बहुत नक्शी काम में कोई डिजाइन वगैरह, हमने बोला हमको दिखाई नहीं दिया, क्यों नहीं दिखाई दिया, हम बाहर ही हैं तो अंदर देखने के लिए कौन सी खिड़की से देखना पड़ेगा, अरे खिड़की का अवलंबन छोड़ दो, अभी अंदर देखना है तो खिड़की से कोई जरूरत नहीं है, अंदर देखना है तो वहाँ अंदर देखो, अभी यहाँ पर भी आपको रोड में देखना है तो खिड़की के पास जाके देखो, वहाँ से झांको बाहर, और बैठे बैठे रूम का ही कुछ देखना है तो क्या करना है?
खिड़की के बाहर
जाना है। खिड़की के बाहर जाके अंदर जाना है क्या? ऐसे ही हमें अपने को जानना है तो इंद्रिया मन ये तो सब वायु पदार्थों को जानने में ही मिलते हैं, उसके अवलंबन लेने की जरूरत ही नहीं है। उल्टा तो उसका अगर अवलंबन लेंगे तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो बाहर ही बाहर का सारा दिखा है। इसलिए हमें अपने को जानना है, यहाँ लिखा ना मन इंद्रिय के अवलंबन से जुदा पड़कर स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें ठहरना। इसलिए वो इंद्रियातीत कहते हैं उसको, मनातीत कहते हैं, उनके द्वारा नहीं, वो तो वायु पदार्थों के जानने में निमित्त होते हैं।
इसलिए कहते हैं जब जीव उस यानी क्या मन और इंद्रिय के अवलंबन से अंशता उससे की जगह उसने उन्होंने मन और इंद्रियों के अवलंबन से अंशता पृथक होता है तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान। स्वतंत्र तत्व यानी मैं स्वयं कैसा हूँ, स्वतंत्र हूँ, किसी से जुड़ा हुआ लगा हुआ अबद्ध अस्पष्ट हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ कि जुड़ा हुआ हूँ, कहते हैं पृथक तो होता है तब स्वतंत्र तत्व का ज्ञान करके उसमें स्थिर हो सकता है। इंद्रियों का धर्म तो यह है कि वे स्पर्श रस गंध वर्ण को जानने में निमित्त हो, ये रिस्पेक्टिवली स्पर्शन इंद्रिय रसन इंद्रिय ग्रहण इंद्रिय ऐसा लेना हो, आत्मा में वह नहीं है इसलिए स्वलक्ष्य में इंद्रिया निमित्त नहीं है। मन का धर्म यह है कि वह अनेक विकल्पों में निमित्त हो, वह विकल्प भी यहाँ स्वलक्ष्य में नहीं है, यानी जब जीव मन के द्वारा स्वलक्ष्य करता है तब उसमें मन भी निमित्त नहीं है, विकल्प भी वहां निमित्त नहीं है। जो ज्ञान इंद्रियों तथा मन के द्वारा प्रवृत्त होता था वही ज्ञान निजानुभव में वर्त रहा है। इस प्रकार इस मति ज्ञान में मन इंद्रिया निमित्त नहीं है। ये किसमें बात कर रहे हैं कि जब स्वर्ग का लक्ष्य करेंगे जब की बात है। यह ज्ञान अतीन्द्रिय है, मन का विषय मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ है, इसलिए मन संबंधी परिणाम स्वरूप से स्वरूप के विषय में एकाग्र होकर अन्य चिंतन का निरोध करता है, इसलिए उसे उपचार से मन के द्वारा हुआ कहा जाता है। ऐसा अनुभव चतुर्थ गुणस्थान से ही होता है। ये यहाँ हिंदी आधुनिक मोक्षमार्ग अंतर्गत रहस्यपूर्ण चिट्ठी उसका रेफरेंस दिया। ये पूरी चिट्ठी 4 से 7 तक होगी लेकिन ये इतना ही पैराग्राफ उसमें से निकाल के दिया। इस सूत्र में बतलाया गया है कि मति ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त है, यह नहीं कहा है कि मति ज्ञान में ज्ञेय अर्थ यानी वस्तु और आलोक यानी प्रकाश निमित्त है, क्योंकि अर्थ यानी यह तो वस्तु बताया ना, और आलोक मति ज्ञान में निमित्त नहीं है, उन्हें निमित्त मानना भूल है। यह विषय विशेष समझने योग्य है, इसलिए प्रमेय रत्नमाला हिंदी पुस्तक 50 से 55 यहाँ संक्षेप में दे रहे हैं। यानी उन्होंने जो ये बताया है कि मति ज्ञान में जो वस्तु है और जो प्रकाश है ये निमित्त है, ऐसा नहीं है। ये बात अगर हमें समझनी है तो कहते हैं प्रमेय रत्नमाला पढ़ो, वो पेज उसमें थोड़ा सा दिया है उन्होंने, वो देखते हैं अभी। प्रश्न
यहाँ क्या कहते हैं कि इंद्रियों को तो निमित्त कहा, मति ज्ञान में इंद्रियों और मन को निमित्त रूप से कहा। निमित्त से ज्ञान नहीं होता वो बात ठीक है, परंतु निमित्त रूप से भी किसको लिया है? इंद्रियों और मन को। परंतु गेय पदार्थों को या प्रकाश को, आलोक ने प्रकाश को यह निमित्त रूप से स्वीकार नहीं किया है। कन्या ने क्या बताया अभी?
इंद्रिय को स्वीकार किया,
इंद्रिय को निमित्त कहा, मति ज्ञान में इंद्रिय और मन को निमित्त कहा, परंतु सामने वाली वस्तु को या प्रकाश को निमित्त में भी नहीं लिया। ये बात अभी समझाएंगे प्रश्नोत्तर।
वहाँ कह रहे उनको निमित्त मानना भूल है। प्रश्न, सामव्यवहारिक मति ज्ञान का निमित्त कारण इंद्रियादि को कहा है, उसी प्रकार गेय पदार्थ और प्रकाश को भी निमित्त कारण क्यों नहीं कहा? प्रश्नकार का तर्क यह है,
वो क्यों ये प्रश्न उठा रहे हैं, फिर प्रश्न कोई और समझा रहे।
सामव्यवहारिक यानी हम लौकिक में जो व्यवहारिक बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। प्रश्नकार का तर्क यह है कि अर्थ यानी वस्तु से भी ज्ञान उत्पन्न होता है और प्रकाश से भी ज्ञान उत्पन्न होता है, यदि उसे निमित्त न माना जाए तो सभी निमित्त कारण नहीं आ सकते, इसलिए सूत्र अपूर्ण रह जाता है।
सभी को निमित्त स्वीकार हो, एक ही निमित्त लिया, दूसरा भी निमित्त है, उसका भी नाम ले लो सूत्र में, ये उसको कहना।
समाधान, आचार्य देव कहते हैं कि नार्था ही है ना,
अर्थ
अलोक कारणम परिच्छेद
तमोवत
द्वितीय समुद्देश अधिकार
परिच्छेद्यत्व।
अर्थ और आलोक दोनों सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण नहीं है, किंतु वे केवल परिच्छेद्य यानी गेय है, जैसे अंधकार गेय है वैसे ही वे भी गेय है। कौन? पर वस्तु या जो वस्तु पदार्थ है वह, और आलोक यानी प्रकाश। जैसा अंधकार गेय है वैसा वे भी गेय है, वो कोई ज्ञान होने में निमित्त नहीं कहे जा रहे। इस न्याय को बतलाने के लिए तत्पश्चात सातवां सूत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब अर्थ और आलोक हो तब ज्ञान उत्पन्न होता ही है, और जब वे न हो तब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। देखो ये क्या कहना चाहता है, मैं समझाता हूँ आपको। अभी हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने में लाइट निकल जाए तो हम पढ़ के जो हमें ज्ञान हो रहा था तो अंधकार में ज्ञान होगा क्या बंद होगा, ज्ञान होना चालू रहेगा क्या बंद होगा, ऐसा अपना सवाल है। हाँ, अंधकार का ज्ञान चालू है ना, हमें दिखता नहीं है, इसका तो ज्ञान चालू है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रकाश यह ज्ञान का कारण नहीं है, तो अंधकार होगा तो ज्ञान कार्य करना बंद होना चाहिए, नहीं, उसको अंधकार का तो ज्ञान हो रहा है ना।
यानी ये गेय है, ज्ञान के कारण नहीं है, निमित्त नहीं, इंद्रियों को निमित्त कहा, वैसे पदार्थों को निमित्त नहीं, उसमें निमित्त में नहीं लिया उसको, या प्रकाश को भी नहीं निमित्त में लिया, क्योंकि जैसे अंधकार दिखाई देता है वैसे भी प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो गेय हो गया, वो निमित्त नहीं हुआ, ये कहना
चाहते।
अभी उसको समझा रहे।
देखो फिर से मैं अर्थ पढ़ूंगा, वस्तु अर्थ जो लिखा है उसका वस्तु, और आलोक यानी प्रकाश दोनों सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के कारण नहीं है, किंतु वे केवल परिच्छेद्य यानी क्या, परिच्छेद को छोड़ो, वे केवल गेय है, वो भी मेरे ज्ञान की गेय है, प्रकाश मेरे ज्ञान का गेय, अंधकार मेरे ज्ञान का गेय। जैसे अंधकार गेय है वैसे ही वे भी गेय है, कौन से वस्तु और यानी पर पदार्थ और प्रकाश आलोक। इसी न्याय को बतलाने के लिए तत्पश्चात सातवां सूत्र दिया गया है, इसमें कहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब अर्थ और आलोक हो तब ज्ञान उत्पन्न होता ही है। इसलिए हमने देखा ना, अंधकार हो जाए तो क्या हो गया, ज्ञान करना, ज्ञान का कार्य रुकेगा कि चलेगा। और जब वे न हो यानी अर्थ और प्रकाश, तब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। इसके लिए निम्नलिखित दृष्टांत दिए गए हैं, यानी कुछ उन्होंने उदाहरण भी हमें पेश किए। एक मनुष्य के सिर पर मच्छरों का समूह उड़ रहा था, किंतु दूसरे ने उसे बालों का गुच्छा समझा। इस प्रकार यहाँ अर्थ यानी वस्तु ज्ञान का कारण नहीं हुआ।
वस्तु से अगर ज्ञान होता तो जैसी वस्तु वैसा ज्ञान होना चाहिए। तो कहते कि किसी को काले काले बाल के सिर के ऊपर मच्छर मंडरा रहे थे, तो उसने ये क्या समझा? उसको बाल ही समझा, बाल हो गए उसके।
देखो ये आज
तो मच्छर और ये तो बाल समझ रहा
है। ये बात को और अच्छी बात अच्छी तरह से समझने के लिए आपको एक बात बताता हूँ। रोज लोग घूमने जाते थे, आज की बात नहीं है, 50 साल पहले की बात। तो एक बाजू में से एक व्यक्ति जा रहा था, तो उसको मैंने कहा, देखो क्या ये लड़की है, क्या ये लड़का है, क्या लड़की है, जो भी है, तो लड़की होकर लड़के जैसा कपड़ा पहनती है, यानी शर्ट पैंट जो कुछ पहना होगा, शर्म नहीं आती? तो बाजू वाला व्यक्ति बोला, खबरदार, वो मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ, वो भी शर्ट पैंट में थी। वही बात यहाँ बता रहे क्या अभी आपको आपने जो बताया कि वो सर पे तो मच्छर, आजकल का जमाने, पहले के जमाने में बहुत मच्छर होते थे, तो लगा कि उसकी हेयर स्टाइल वैसी कुछ है कि इसका गुच्छा ऐसा लगा, तो ऐसा नहीं है कह रहे, यानी ये कहते हैं कि सामने वस्तु है इसलिए हमें वैसा ही ज्ञान हो गए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वस्तु कुछ भी हो, अपना ज्ञान का परिणाम कुछ भी हो, उसमें क्या है?
अभी हमने देखा था ज्ञान का परिणाम हमेशा सब्जेक्टिव होता है, तो यहाँ पे ये क्यों ऐसे लगा कि ये भारत का बच्चा?
आपने बिल्कुल सही कहा, आप जो कह रहे हैं कि ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता है, सम्यक ही होता है। हाँ, लेकिन वो सम्यकपना और मिथ्यापना किसके बारे में है? सात तत्व देवगुरु शास्त्र के बारे में। ये बताए, ये पेंसिल, सॉरी, ये पेंसिल को पेंसिल कहना या नहीं कहना, इसमें सम्यक और मिथ्यात्व का कोई संबंध नहीं है। ख्याल में ना, आपका जो प्रश्न है ऐसा ही है, तो उसका जानना ज्ञान का क्षण
उदय है और ज्ञान का उगाड़ नहीं है, यानी वही उपादान की तरफ से लगा।
अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्या लिखा है? चश्मा लगाओ, नहीं दिखता है। और वहाँ ऊपर क्या दिखता है? चांद दिखता है कि नहीं? तो इतना नदी का नहीं दिखता, उतना लंबे का दिखता है, आप बोले इतना दूर का नहीं दिखता, ऐसा कैसा होगा? तो ज्ञान का क्षोभ उस समय उस तरह था, दूर का भी दिखे लेकिन इधर का दूर का नहीं दिखे, ऐसा है।
उसको क्या कहेंगे? ज्ञान को अज्ञान कहेंगे, और ये नहीं सही नहीं जाना, उसको क्या कहेंगे?
ज्ञान नहीं हुआ, विपरीत हुआ जो कुछ है। हाँ, चले आगे, क्या आपके समाधान हुआ क्या? नहीं,
वो सर्वथा समय ज्ञान नहीं मानना उसको, की अपेक्षा समय मिथ्या तो भेद किए थे, ज्ञान तो ज्ञान होता है, ऐसी अपेक्षा वहाँ पर है, मतलब सर्वत्र लगा लो मिथ्या ज्ञान होता है, नहीं समय ही होता है, ऐसा नहीं करो, अपेक्षा से बात करो, सर्वथा नहीं।
अंधकार में बिल्ली और एक नाम देना चाहिए था, उल्लू,
सभी
उल्लू होता है ना, गुबड़, क्या बोलते हैं आप लोग? आउल, 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 डोंट बी फाउल। क्या कह रहे? अंधकार में बिल्ली इत्यादि रात्रिचर प्राणी वस्तुओं को देख,
चोर, बिलाड़ी, चोर, रात न चरना, चरना
रहने, रात में
चरते चलते,
इसलिए ज्ञान के होने में प्रकाश कारण नहीं हुआ। देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या बात निकलते हैं। उपरोक्त दृष्टांत, मच्छरों का समूह था किंतु ज्ञान तो बालों के गुच्छे का हुआ। यदि अर्थ ज्ञान का कारण होता तो बालों के गुच्छे का ज्ञान क्यों हुआ और मच्छरों के समूह का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? और दृष्टांत दो में बिल्ली आदि को अंधकार में ज्ञान हो जाता है, यदि प्रकाश ज्ञान का कारण होता तो बिल्ली को अंधकार में ज्ञान कैसे होता? तब प्रश्न है, तब यह मति ज्ञान किस कारण से होता है?
अभी इसमें और एक उदाहरण बताओ, प्रकाश में दिखता है ना, चीजें प्रकाश में दिखाई देती है, तो दिन में तारे कितने दिखाई देते हैं? क्यों नहीं दिखते? प्रकाश है नहीं इतना, अगर प्रकाश है इसी में नहीं दिखते, क्योंकि उनके प्रकाश से दूसरा प्रकाश ज्यादा है यहाँ पर सूर्य का, तो वो उनके नहीं दिख रहे। यहाँ पर भी भोग भूमि थी तब कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना, वहाँ तो सूर्य का भी प्रकाश नहीं दिखता, सूर्य चांद भी दिखाई नहीं देते, तो क्या नहीं थे क्या वहाँ पर? तो उस जमाने में सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखता था, ये सूर्य ही नहीं दिखता था, और आजकल दिखाई दिखाई देता है, ये क्या है ना, इसमें क्या कॉज हो सकते है?
क्या कहा? देखो प्रश्न उठ रहा है कि तब यह मति ज्ञान किस कारण से होता है? क्षयक्षमिक ज्ञान की योग्यता अनुसार ज्ञान होता है। भाई आपके प्रश्न का उत्तर आया, क्षयक्षमिक ज्ञान की योग्यता से, योग्यता के अनुसार ज्ञान होता है। ज्ञान होने का यह कारण है, ज्ञान के उस क्षयक्षम के अनुसार यह होता है। अभी हम जीव के बात करेंगे तो उसके ज्ञान के क्षयक्षम के अनुसार, और कर्म के तरफ से बोलेंगे तो ज्ञान एवं कर्म, या उदय अज्ञान की बात की ना तो कर्म के तरफ से बोला, ज्ञान के उस क्षयक्षम के अनुसार यह होता है, वस्तु के अनुसार नहीं। इसलिए यह निश्चित समझना चाहिए कि बाह्य वस्तु ज्ञान के होने में निमित्त कारण नहीं है। आगे नवे सूत्र में इस न्याय को सिद्ध किया है, जैसे दीपक घट इत्यादि पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता तथापि वह अर्थ का प्रकाशक है। यानी क्या कहते हैं, जो दीपक है वो घट या अन्य किसी पर पदार्थों से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन वो उनको तो प्रकाशित करता है, ये बात बता रहे। जिस ज्ञान की क्षयक्षम लक्षण योग्यता है वही विषय के प्रति समय रूप ज्ञान होने का कारण है, ऐसा समझना।
समय रूप का नियम रूप,
तो मैंने क्या पढ़ा, प्रति समय पढ़ा, प्रति नियम रूप ज्ञान होने का कारण है,
उनके प्रति नियम रूप
ज्ञान, विषय के प्रति नियम रूप ज्ञान होने का कारण है। मेरे दिमाग में कुछ अन्य बात चल रही थी इसलिए कुछ गड़बड़ हो गया।
ये कहते हैं जो जिस योग्यता लक्षण है, जो उपादान की योग्यता है, ज्ञान की पर्याय की जो योग्यता है, वैसा ही ज्ञान होगा। सामने कोई अन्य वस्तु है हमको ज्ञान कुछ अन्य होगा, है ना, अभी बताए ना।
नहीं मैं ये सोच रहा था, अब ये जो घड़ी है इसमें कभी कभी क्या होता है कि उसका जो सेकंड काटा है वो इतना बड़ा है कि वो मिनट काटा लगता है, और ऐसा लगता है कि अरे अभी आठ में पांच का मिनट। यानी
समय पर गया वो।
हाँ मैं दिमाग में वही सोच रहा था और ये बात उससे लगती है, लेकिन मैंने गलत पढ़ लिया। जब आत्मा के मति ज्ञान होता है तब इंद्रिया और मन दोनों निमित्त मात्र होते हैं। वह मात्र इतना बतलाना चाहते हैं कि आत्मा उपादान है, निमित्त अपने में निमित्त में शत प्रतिशत कार्य करता है, किंतु वह उपादान में अंश मात्र कार्य नहीं करता। यहाँ निमित्त और उपादान की स्वतंत्रता बता रहे हैं। निमित्त परद्रव्य है, आत्मा उससे भिन्न द्रव्य है, इसलिए आत्मा में यानी उपादान में उसका यानी निमित्त का अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के क्षेत्र में घुस नहीं सकता, इसलिए निमित्त उपादान का कुछ नहीं कर सकता। यहाँ एक एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये बात अपनी बहुत बार हुई है इसलिए मैं विशेष नहीं बता रहा हूं। उपादान अपने में अपना कार्य कर स्वतः शत प्रतिशत करता है।
शत प्रतिशत समझते? 100%।
वो तो 100% समझते हो ना मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, वह 11वें सूत्र में कहा है।
ये सूत्र नंबर यहाँ की नहीं है, ये जो रत्नमाला बता दे, हमें रत्नमाला की बात
वह परोक्ष ज्ञान है, इसलिए उस ज्ञान के समय निमित्त की स्वतः अपने कारण से उपस्थिति होती है। वह उपस्थिति निमित्त कैसा होता है उसका ज्ञान कराने के लिए यह सूत्र कहा है, किंतु निमित्त आत्मा में कुछ भी कर सकता है यह बतलाने के लिए सूत्र नहीं कहा है। यदि निमित्त आत्मा में कुछ करता होता तो वह निमित्त स्वयं ही उपादान हो जाता। यहाँ जो लिख रहे हैं निमित्त आत्मा में कुछ कर सकता है, उसकी जगह हम निमित्त उपादान में कुछ कर सकता है ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आत्मा के और ज्ञान की बात चल रही है इसलिए उसको आत्मा को लिया है। और निमित्त भी उपादान के कार्य के समय मात्र आरोप कारण है। यदि जीव चक्षु के द्वारा ज्ञान करे तो चक्षु पर निमित्त का आरोप होता है। चक्षु पर निमित्त कितना क्या क्या लिखा है, चक्षु पर निमित्त का आरोप होता है। और यदि जीव व अन्य इंद्रिय या मन के द्वारा ज्ञान करे तो उस पर निमित्त का आरोप होता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में यानी पर द्रव्य में अकिंचित कर है, अकिंचित कर यानी उसमें कुछ नहीं कर सकता है, करता भी नहीं है। क्या लिखा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में यानी पर द्रव्य में अकिंचित कर है अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता, अन्य द्रव्य का अन्य द्रव्य में कदापि प्रवेश नहीं है और न अन्य द्रव्य अन्य द्रव्य की पर्याय का उत्पादक ही है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने अंतरंग में अत्यंत यानी संपूर्णतया प्रकाशित है, पर में लेश मात्र भी नहीं, अपने में अत्यंत प्रकाशित है यानी अपने ही स्वद्रव्य में रहता है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में, और पर में लेश मात्र भी नहीं यानी पर में जा ही नहीं सकते हैं। पहले ही बताया दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, इसलिए निमित्त भूत वस्तु उपादान भूत वस्तु का कुछ भी नहीं कर सकती यानी निमित्त उपादान में कुछ भी नहीं कर सकता। उपादान में निमित्त की द्रव्य से क्षेत्र से काल से और भाव से नास्ती है, और निमित्त में उपादान की द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ती है। देखो यहाँ पूरी बात हमको एक्सप्लेन करके समझाई है जो हम जानते भी हैं उसके बारे में, इसलिए एक दूसरे का क्या कर सकते हैं। यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ करने लगे तो वस्तु अपने वस्तुत्व को ही खो बैठे। क्यों ऐसा क्यों लिखा है अश्विन भाई, क्या कहा, एक दूसरे का क्या कर सकते हैं तो हो गया। यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु का कुछ करने लगे तो वस्तु यानी द्रव्य अपने वस्तुत्व को खो बैठेगा, ऐसा क्यों कहा जाता है या कहा जा रहा है। हाँ, वस्तुत्व को क्या बताता है। अरे ठहरो, ये अश्विन कितने अपने यहाँ, देखो उनका बेटा भी नहीं बोलता, तुम लोग बोलते ये क्या भरा क्या। हाँ अभी लक्ष्मी भून आप बोलो। अरे 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 कभी जरा जोर से बोलना, पहली बात समझना, मैं बहुत ऊंचा सुनता हूँ, आपकी भाषा में बोलना है तो मैं बहरा हूँ। हाँ बिल्कुल, तो फिर वस्तु तो गुण बताया लेकिन अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करता है, ये अच्छा है, मेरे बहरेपन का अच्छा फायदा लेते हैं, कुछ बोला ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये बात है वस्तु तो गुण यह बताता है कि द्रव्य तो छोड़ो, द्रव्य का प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, इसका अर्थ क्या हो गया? अपना भी कार्य करे और पर का भी कार्य करे, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वो वस्तुत्व का वस्तुपना ही टूट जाएगा, वस्तुत्व को ही खोए यानी वस्तुपना ही उसका छूट जाता है, किंतु ऐसा हो नहीं सकता। अभी इसको जरा पढ़ के आगे ये कल ही लेंगे फिर, निमित्त संयोग रूप कारण हो। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्त चरणमो सदा।